ओम शांति। मधुबन में आते आपकी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट रहती। सवेरे से रात तक भिन्न भिन्न योग के क्लासेस, ज्ञान के क्लासेस, मुरली के क्लास, भिन्न भिन्न ऐसे टाइम टेबल बना हुआ है, तो आपको कुछ व्यर्थ संकल्प आने की समय मिलता? तो इसी से ही आप समझ सकते हैं कि कहां पर भी रहें, परंतु अपना टाइम टेबल यदि आप खुद ही पहले से ही निश्चित कर देवे तो उसे सहज सहज व्यर्थ से मुक्ति हो जाए। बाबा ने ये कई बारी बताया है कि जिस तरह से कोई भी मुख्य व्यक्ति होते वो अपना डायरी रखते हैं अपॉइंटमेंट्स की, कि किस समय किस रीति से कहां पर किस कैसे मिलना होगा, क्या क्या कार्य करना होगा, तो उसी तरह से मन का भी टाइम टेबल बनाने के लिए बाबा ने हमें आदेश दिया हुआ है। मानो कि एक सिंपल तरीके से मैं बताती, परंतु अनेक और प्रकार से भी आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते। मानो सवेरे अमृत वेले माता पिता के साथ मुलाकात करते, पहले तो उन्हों की ब्लेसिंग्स लेना होता। तो सवेरे का समय है बच्चा बनकर दुआएं लेने का, आशीर्वाद लेने का। बाबा के साथ वो हम बहुत अच्छी तरह से संबंध जोड़ के और फिर साथ ही साथ बीज रूप स्थिति में बिल्कुल पुराना हिसाब किताब बाबा प्यार से हमारा चुकतू कर लेता। और फिर मुरली के समय बाबा हमारा सुप्रीम टीचर, हाँ वो भी हमारा योगी कहेंगे, बीज रूप स्थिति अलग, परंतु मुरली के समय बिल्कुल ये बात ध्यान पर रहे कि कौन हमें ये सब बातें सुना रहे हैं। बाबा इतनी गहरी गहरी बातें सुनाते हैं जो कोई भी मनुष्य आत्मा के पास न इतनी जानकारी है, न इतना ज्ञान है, न इतनी समझ है, जो हमें जो बाबा बातें सुनाते, जिस तरह से बाबा सुनाते, इतना प्यार से एक एक बात स्पष्ट करते, तो वो टीचर के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा बनता जाए। जैसे ही दिन का कारोबार शुरू हो जाए तो उस समय बाबा को सतगुरु मानकर साथ ही साथ जो बाबा ने जिस तरह से हमें श्रीमत दी है वो हम चेक करते रहें, श्रीमत का कहाँ तक हम पालन कर रहे हैं। जो मुख्य मुख्य श्रीमत होती है, अपने अन्न की परहेज, अपनी ब्रह्मचार्य व्रत की पालना, वो तो आप कब से कर ही रहे हैं, परंतु जो मन की स्थिति की श्रीमत के लिए बाबा ने बताया है, तो वो दिन भर कहाँ तक उस श्रीमत अनुसार हम अपना कारोबार कार्य व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि बाहर रहते तो भी अपना कारोबार होता, घर संभालने वाली बहनें हैं उन्हों का भी होता, सेंटर संभालने वाली बहनें हैं वो भी कोई दिन भर बैठ करके मुरली की स्टडी करे और योग लगाए, वो तो कम ही होता, उन्हों का भी भिन्न भिन्न प्रकार से दिन भर का कारोबार चलता ही है। तो कारोबार करते समय मेरी मन की स्थिति किस प्रकार से हो, बाबा ने उसके प्रति क्या मुझे श्रीमत दी है, तो आप ध्यान पर वो बात रखेंगे तो जैसे वो बात स्मृति में आएंगी, प्रैक्टिकल आपको वो कर्म योगी का अनुभव रहेगा। क्योंकि हम पूछते हैं ना कि कर्म भी करें और साथ साथ बाबा के साथ हमारा योग भी रहे, यदि हमें सतगुरु की श्रीमत याद है तो एक नेचुरल रीति से हमारा दिन भर वो श्रीमत अनुसार मन की स्थिति बन करके रखते। साक्षी दृष्टा वो दिन भर की स्थिति की बात है, भाई भाई की दृष्टि वो भी इसी तरह से बात है, हम बिल्कुल आत्म अभिमानी रह करके हर कार्य करें तो आप देखो कि भिन्न भिन्न सूक्ष्म मन की स्थिति को ठीक रखने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या बातें बताई हैं। तो यदि हम इस तरह से टाइम टेबल फॉलो करते हैं फिर शाम का समय बहुत ही सुंदर बाबा को फ्रेंड बना करके जो मन की बात है बाबा के साथ हम करें। फिर जो शाम का निमय शाम का योग है फरिश्ता रूप धारण करके बाबा के साथ विश्व सेवा का पाठ बजाएं। कहती हैं कि इस समय जो फरिश्ते होते हैं देवताएं होते हैं वो सृष्टि पर चक्कर लगाते हैं तो वो कौन है बाबा के बच्चे। तो बाबा के बच्चे यदि इस तरह से अपना दिनचर्या सारा दिन ठीक रखें मानसिक स्थिति के हिसाब से तो फिर व्यर्थ संकल्प आने की बहुत कम मार्जिन है। यदि आते भी हैं तो जल्दी उसको समाप्त कर सकते। और रात्रि के समय पहले तो हम धर्मराज बाबा को याद करें। क्यों? क्योंकि धर्म का राज्य स्थापन करने वाला बाबा हमारा फ्रेंड है। ऐसे नहीं कि हमें धर्मराज से कुछ डर है, नहीं। जिसने हिसाब किताब अपना चुकतू नहीं किया होगा उन्हों को मन में डर आ सकता, परंतु यदि हमने धर्म का राज स्थापन करने के कार्य में हम बाबा के साथ मदद कर रहे हैं तो धर्मराज के साथ तो एक बहुत समीपता का प्यार का संबंध जुड़ा हुआ है। तो रात्रि के समय उसके सामने ही अपना पोता मेल रखें प्लस माइनस। और तीसरा जो कुछ बाकी पास्ट का रहा हुआ है आज के दिन में प्लस पुण्य कर्म कहाँ तक हुआ, आज के दिन में कुछ माइनस तो नहीं हुआ, परंतु पूर्व का हिसाब किताबी कहाँ तक हमें बोझ महसूस होता अथवा वो अभी तक हमने चुकतू नहीं किया वो भी हिसाब रखें। तो यदि इस तरह से हम अपने माइंड का टाइम टेबल बना कर रखते हैं तो आप सोचो कि कितनी ऊंच स्थिति बन सकती अथवा हमारे संकल्प शक्ति कितनी महान कितनी श्रेष्ठ बनी रहती। व्यर्थ संकल्प होंगे तो बहुत जल्दी नेगेटिव संकल्प भी आ सकते, साधारण संकल्प होंगे तो साधारण से भी थोड़ा नीचे व्यर्थ में चले जाएंगे, परंतु यदि हमारा लक्ष्य ही है बाबा के साथ हमारा संबंध भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव होता रहे तो फिर श्रेष्ठ संकल्प बहुत ऊंच संकल्प बहुत रॉयल संकल्प वही चलेंगे तो आत्मा तो उड़ती रहेंगी, नीचे आने की मार्जिन ही कम हो जाती। बाकी ये भी देखा गया है कि जितना जितना आज जो बाबा हमें आज्ञा दे रहे थे हर रोज बाबा भिन्न भिन्न बातें बहुत ही सुंदर बताते, परंतु विचार सागर मंथन की बात आज बाबा ने कई बार उठाई। तो जितना जितना हमारा ध्यान होगा कि हम बुद्धि को बहुत अच्छा भोजन सवेरे जो देती हैं उसका किस तरह से हम हाजमा करते हैं दिन भर, यदि उस पर भी हमारा ध्यान होगा तो भी आप देखेंगे कि व्यर्थ की मार्जिन निकलती जा रही। बाबा से ये हम वरदान ले सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा सवेरे उठकर सुदर्शन चक्रधारी बनो, सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करो, बाबा की बातें याद करो। जिसके साथ प्यार होता उसका सिर्फ चेहरा आंखों के सामने नहीं आता, नहीं उसकी बातें याद आती। तो बाबा ने कितनी मीठी मीठी बातें याद दिलाई है फिर से वो हम उसको इमर्ज करें। और जो बाबा ने हमें आज की मुरली सुनाई या स्लोगन या वरदान, जितना जितना उस बात में हम अपने को बिजी रखते हैं, जो कारोबार है जहां पर ध्यान देना है, बाबा उसको व्यर्थ नहीं कहते, वो तो करना ही है और अच्छी तरह से करना है। कोई स्टूडेंट है तो बाबा उसको कहेंगे तुम अच्छी तरह से स्टडी करो जो तुम्हारा डिस्टिंक्शन से पास विद ऑनर हो करके दिखाए। ऐसे कोई उंगली ना उठा करके कहे क्योंकि आपका ज्ञान और योग में ध्यान है इस कारण से तुम्हारे मार्क्स कुछ कम आए। तो जो जरूरी बातें हैं उस पर ध्यान देना तो बाबा मना नहीं करते। कारोबार में भी यदि हम फोकस करके कंसंट्रेशन करके जो हमारा काम है वो हमने नहीं किया तो फिर उसमें भी कोई जीवन में जो प्राप्ति होनी चाहिए, सफलता की महसूसता होनी चाहिए, वो नहीं होंगी। परंतु मम्मा कहती थी वेस्ट को बेस्ट बना लो, और जो एक्चुअल फोकस कंसंट्रेशन का समय होता वो सारा टाइम नहीं होता। मानो कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, जाते हैं 9 बजे, 11 बजे तक 2 घंटा भी अच्छी तरह से फोकस करके काम करे, उसमें भी कोई आकर के बीच में हेलो करेगा, कोई आकर के बीच में प्रश्न पूछेगा, ध्यान इधर उधर तो जाता ही है। परंतु उस समय भी जो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है उसको आप दिल से अप्लाई करो, उसका अभ्यास करो, तो भी उस हिसाब से दिल को मन अच्छी तरह से शांति से चलता रहेगा। तो उसमें फिर क्या है कि जो हमारा व्यर्थ जाता वो हम उसको सफल करते चले। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प हमको कहाँ से मिलेंगे? संसार में तो कोई ऐसे सदा प्रेरणा देने वाला है ही नहीं। एक बाबा ही है जो हमें सदा हर रोज नई 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 बातें सुनाते सुनाते हमारे बुद्धि को बिल्कुल ऊंचा ले जाते। तो वो बातों को याद करके जिसको बाबा कहते विचार सागर मंथन, उससे प्राप्ति क्या होती? उससे जो छाछ है वो अलग हो जाता और जो माखन है, वो जो ज्ञान का सार है, वो आपके पास आ जाता तो उस मक्खन से आपको कितनी शक्ति मिलती। पहले दिनों में तो हम मधुबन में आते थे तो हम देखते थे पांडव भवन के दिनों में कि एक भाई, उसका नाम था अर्जुन, अर्जुन दादा उसको कहते थे, एक कोने में बैठ करके वो सारा ही समय वो विलोर के वो ताजा ताजा सफेद सफेद बहुत सुंदर शक्ल वाला मक्खन निकालता था। आजकल तो हर बात की मशीन है, बटन दबाओ अपने आप ही हो जाता। परंतु जो बाबा हमें देते यदि हम उसका मंथन करते हैं तो एक तो वो सार में शक्तिशाली भोजन क्या है, वो मक्खन क्या है, वो हमें प्राप्त होता। तो फर्स्ट स्टेज है ज्ञान का मनन चिंतन करना। मनन, आप देखेंगे कि माइंड में जो बातें होती उसकी फीलिंग्स भी बनती। आप जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे आपको एक बहुत खुशी का अनुभव होता रहेगा उसी समय। क्यों? आप दुख की बातों को याद करो क्या होगा, आपकी स्थिति नीचे जाती रहेंगी। आप बाबा के सुख की बातों को याद करो तो स्थिति ऊपर ऊंची जाती रहेंगी। मनन में हम रिवाइज कर रहे हैं बाबा के ज्ञान का। फिर नेक्स्ट चिंतन। चिंतन में जो बात हमने बहुत उस पर विचार किया है वो जैसे कि अंदर बैठ जाती है। यदि आपको किस बात का फिक्र है, आप उसका बार बार न चाहते भी वो चिंतन में आ जाता तो वो चिंता का रूप बन जाता। तभी कहते हैं कि चिंतन में ले लो राम, तो सब दुख दूर हो जाए। तो चिंता से मुक्त होने के लिए ज्ञान का चिंतन, और चिंतन करके फिर वो ऑटोमेटिकली बात वो बैठ जाती है मन में, और फिर मंथन। कुछ गहरी बात हमारे जीवन के लिए, कुछ हमें उससे प्राप्ति होती, तो वो जो प्राप्ति होती तो उसमें हमें बिल्कुल बाबा के लिए बहुत प्यार जागृत होता। क्योंकि जो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा थालियां भर भर करके रत्नों से देते हैं, तो जब हम उस रत्न को गहराई से देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी सुंदरता किस प्रकार से है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो जिस दाता ने हमें ये रत्न दिए हैं हम उसको बहुत प्यार से थैंक्स देते हैं, और दिल में वो बाबा की याद बैठ जाती। तो मंथन वो न सिर्फ ज्ञान का स्पष्टीकरण, परंतु बाबा के साथ और संबंध जुटते, जिससे फिर हमारा स्मरण बन जाता। सिमर सिमर सुख पाओ, जितना बाप की स्मृति रहती, स्मरण करते हैं बाबा का, उतना हमें सुख की अनुभूति होती। और स्मरण से स्मृति, स्मृति से हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति, संस्कृति, सृष्टि, तो ये सब बातों का कनेक्शन कहाँ से होता? हमारे चिंतन से, मनन चिंतन से। तो या तो होगा व्यर्थ बातों का चिंतन, आप पानी को बैठ करके मंथन करो, क्या होगा आपकी बाएं थक जाएंगी परंतु कुछ रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो आपने फालतू बातों का चिंतन किया तो उससे चिंता लग गई और ये आत्मा भारी हो जाएंगे, थकान हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक घंटा बीत गया और थकान आ गई, परंतु काम तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक घंटा हमने अच्छी तरह से सफल नहीं किया। एक घंटा मेरा कहाँ गया? फालतू बातों में गया। कोई एक बात का विचार आया, फिर वो एक ट्रेन छूट गई, फिर उस ट्रेन को रोकना बड़ा मुश्किल होता। तभी बाबा ने बता दिया है कि ये जो छोटी छोटी शब्द है, क्यों, क्या, कैसे, है छोटे शब्द परंतु ये है व्यर्थ संकल्पों की ट्रेन का इंजन। आपने इंजन को छुट्टी दे दी तो वो बहुत लंबी ट्रेन चलती रहेंगी। क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? जिस समय कोई आग लग रही है आप रुक करके पूछो ये क्यों हुआ, तो वो तो कितना नुकसान हो जाए। समय बीत जाए और आग तो बढ़ती रहेंगी। इसी तरह से अपने जीवन में भी कुछ बात हो गई और हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों हुआ, तो हमें कुछ सलूशन नहीं प्राप्त होगा। परंतु यदि हम उस घड़ी फुल स्टॉप लगा करके बाबा की याद में बाबा का इशारा हम पकड़ लेवे, तो उस इशारे को पकड़ने से फिर बाबा हमें गाइडेंस देता किस तरह से अब करना है, क्या करना है। तो उसमें जो बात या तो उलझन में आने वाली थी या तो बात का सुलझन हो गया, और वो है हमारी स्थिति की बात। बात तो हो गई जो कुछ भी है, परंतु उसको सुलझाने का तरीका या उसको और मुंझाने का तरीका वो अपने हाथ में होता, जो हम कई बार रियलाइज नहीं करती है। बात तो बात ही रहेंगी, परंतु उसका हमारा रिस्पॉन्स उस समय क्या होता, रिएक्शन होता, तो रिएक्शन में बात बिगड़ती जाती। और वो समय यदि हम शांति से फुल स्टॉप करके फिर हम बाबा के इशारे से جو بات مجھے بولنی ہے کرنی ہے ہم کرتے ہیں، ضرور اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ نکلتا ہوں. تو بابا کی یہ سب باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے، پرنتو کیا ہے کہ ہم اس کا منن چنتن جس کھڑی مرلی سنتے ہیں نا، آپ تین باتیں اس مرلی سے اپنے پاس نوٹ کر لو. صرف بدھی میں نہیں نوٹ کرو، لکھت میں نوٹ کرو، کیونکہ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے ضرور یاد رہیں گے. مرلی کے بعد ایک دوسرے ملنا ہوا، ناشتے پر چلے گئے اور وہ بات کھسک گئی. پھر سوچتے ہیں کہ تھی تو بہت اچھی بات، پرنتو کیا تھی، وہ ایمرج نہیں ہوتی. تو ہر مرلی سے آپ بے شک ڈیٹیل نہ بھی نوٹ کرو، تین ٹاپکس جو بابا نے بتائی ہے، جس بات میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بات مجھے اور گہرائی سے سوچنی ہے، وہ آپ ایک سینٹنس میں بھی اپنے پاس نوٹ کرو. تو پھر اس ایک سینٹنس کو دیکھنے سے بھی آپ کا ٹریگر ہوگا، اس کا آپ کو یاداشت آئیں گی کہ وہ پوائنٹ کس پرکار سے تھی، اور آپ کا منن چنتن اس پر چلنے لگے گا. تو ویرت سے ویرت کو سٹاپ کرنا اتنا سہج نہیں ہوتا، پرنتو ویرت کو چینج کر کے اس میں اپنے کو دوسرا خزانہ ملے، اس خزانے کا منن چنتن کرے، وہ ایک سہج طریقہ ہے. اس کارن سے بابا کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ آپ گھر والوں کو کہو کہ بس مجھے تو ابھی آپ سے سمبندھ نہیں رکھنا ہے، نہیں، آپ بابا کو یاد کر کے سرو سمبندھ بابا کے ساتھ جوڑو، اور جتنی جتنی پراپتی ہوں گی آپ خود ہی دیہی سے نیارے ہو کر وہ جو بابا کی اچھی اچھی باتیں آپ نے دھارن کی آپ کے ویوہار میں آئیں گی، تو پھر آٹومیٹکلی جو پہلے والا کرم حساب کتاب کا سمبندھ تھا وہ چینج ہو کر کے ابھی آپ داتا کے بچے داتا بن کر انہوں کو کچھ دے رہے ہیں. تو نیگیٹو کو بالکل سماپت کرنا اس میں بہت فورس لگتا، پرنتو سہج طریقہ ہے. پازیٹو طرف سے اپنی آتما کو اور اونچا اٹھاؤ تو پھر وہ نیگیٹو باتیں سماپت ہو جائیں گی. اسی طرح سے جتنا جتنا گیان کا منن چنتن اتنا اتنا اور سب باتوں سے آتما کی مکتی ہوتی رہیں گی. تو یہ تو بالکل بہت بہت سندر طریقہ بابا نے ہمیں دیا ہے. پرنتو ایک بار مجھے یاد آتا کہ بہت سارے ورش میں جو سیزن چلی تھی بابا نے ویرت سنکلپوں کے لیے بہت باتیں سنائی. یہ ایٹیز کی بات ہوں گی، ابھی تک اوپر اوم شانتی بھون میں ہی باپ دادا کی پدرامنی ہوتی تھی. تو لاسٹ میں پھر بابا نے کہا کہ بابا نے تو آپ کو بہت باتیں سنائی ہے، پرنتو آپ بھی اس بات پر منن چنتن کر کے آپ دیکھنا کہ کس بات کے کارن آپ کا ویرج سنکپ نکل جاتا چلتے. تو ہم تب تک تو واپس لندن آ گئے، پھر دادی جی بھائی واپس مدھوبن سے داری جان کے، تو ان سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ دادی آپ نے اس بات پر کیا وچار کیا. تو دادی نے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ دو کارن سے ویرت سنکپ ادھک چلتے، وہ دو باتیں کون سی ہے، میں اور میرا. یہ دو باتوں کے کارن دروازہ کھل جاتا ہے ویرت سنکلپوں کا. تو میں کون ہوں، میں آتما ہوں، بابا کی سنتان ہوں، تو آپ کے شریش سنکلپ. اور اس بات کو بھول کر پھر نیچے تھوڑے آ گئے تو پھر اس میں کئی باتیں آئیں گی میں پن میں، اور پھر ساتھ ساتھ میرا بھی شروع ہو جائے گا. جہاں میں اس تن کی بات آتی تو میرا بھی پھر سب لوکک حساب سے، استول حساب سے کئی باتیں آ جاتی. तो फिर आप कभी नोट करना, व्यर्थ संकल्प यदि चल रहे हैं तो आप अपने से पूछना कि मैं आत्मा हूं, तो उस दृष्टिकोण से आप उस सिचुएशन को देखेंगे। मैं शरीर हूं तो अलग दृष्टिकोण से अलग संकल्प चलते, परंतु जब मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, जबकि शिव बाबा कल्याणकारी है, तो उसमें हमारा क्या कभी नुकसान हो सकता है? व्यर्थ संकल्प का फुल स्टॉप हो जाता। तो मैं और मेरा, इस बात को फर्स्ट लेसन कहेंगे, परंतु फर्स्ट लेसन में भी हम वहां ही पांव फिसल जाता। कल बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कारण क्या है कि हम देहभान में आ जाते, कि कलयुग के अंत समय प्रकृति भी तमो प्रधान, हाँ एक तो आदत हो गई है इसमें आने की, परंतु जो प्रकृति तमो प्रधान है वो अपने तरफ बहुत खींचती है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मैं आत्मा हूं, तो ये देह प्रकृति अपने तरफ खींचता है, धरती अपने तरफ खींच रही है, और जब मैं आत्मा हूं तो बाबा अपनी तरफ सहज सहज मुझे खींच सकता। तो बस मुझे इतना तक सिर्फ अटेंशन रखना होगा कि मैं यहां हूं या मैं यहां हूं, बस इतनी सिंपल बात है। और जब मैं यहां हूं तो फिर हाँ, बाबा और बाबा का सारा ही खजाना सर्व संबंध से पूर्ण रीति से प्राप्ति है। तो आत्मा भरपूर, और भरपूर आत्मा संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा दाता, तो देते चलो तो सबकी दुआएं भी मिलती रहे। तो मैं और मेरा को बदलने में हमें थोड़ा सा अटेंशन देना होता है। तो जब आप देखेंगे ना कि जहां मेरा शब्द लौकिक हिसाब से आता है, आपके कितने व्यर्थ संकल्प उसके संबंध से चलते हैं। चाहे घर मेरा है, बस इतना ही बात है, मेरा घर या मेरे बच्चे, ये सब बातें जहां मेरा मेरा आता, बहुत महाजाल बन जाती है व्यर्थ संकल्पों की। फिर ये सोचो, वो सोचो, ये सोचो, सब बातें एक ऐसे जाल बन जाती है जिसमें आत्मा अच्छी तरह से फंस जाती। परंतु बिल्कुल ये सब कुछ यहाँ है और मैं तो यहाँ हूँ, सब कुछ बाकी यहाँ ही है। और जब मैं यहाँ हूँ तो एक दूसरा संसार की मैं वासी हूँ। बाबा के दिल तक पर बैठ सकते हैं, आत्मा उड़ सकती है, अपने घर को याद कर सकती, अपने स्वर्ग के वर्षे को याद कर सकती। तो उसके भेद में जिन जिन बातों का व्यर्थ संकल्प चलता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती। आप देखेंगे कि व्यर्थ संकल्प शुरू हुआ तो उसमें हमारी फीलिंग्स किस प्रकार से होती। आप क्लास में बैठी हैं, बाबा याद है, बाबा सामने है, आंखों के सामने बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनती हैं, बाहर निकले कोई छोटी सी बात हो गई और बस वो खुशी गायब हो गई। एक मिनट आप बहुत खुश थे, दूसरे मिनट खुशी गायब क्यों हो गई? क्योंकि हमारे संकल्प जो इतने ऊंच घूम रहे थे वो किसी कारण से नीचे आ गए। तो हमारे संकल्पों की सृष्टि बनती है। वैसे तो ये भक्ति में भी कहते हैं संकल्पों की सृष्टि, परंतु ज्ञान में प्रैक्टिकल हम देखते हैं, संकल्प यहाँ तो बाबा के साथ उड़ते चलो, संकल्प यहाँ तो फिर क्या हालत हो जाती है। और आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है बाहर वालों में वो है मेंटल प्रॉब्लम्स, दिमाग के प्रॉब्लम्स। परंतु ब्राह्मणों में भी यदि हम अच्छी तरह से अपने स्टडी पर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर फालतू संकल्प जो चलते हैं उस कारण से उसे आत्मा ना उम्मीद बन जाती, आपके व्यर्थ संकल्प चलते फिर उसका रिजल्ट क्या होता, अपने आप से ही ना उम्मीद हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत मंजूर ऊंची है, हम कैसे चल सकेंगे। परंतु संकल्प को चेंज करो और बाबा के ज्ञान के संकल्प को रखो, ये मुश्किल बात नहीं है। बाबा के पास आप सोचो, जब शुरू शुरू में जो भी बहनें आई थी मैं समझती उसमें से शायद एक दो ही मैट्रिक पास की हुई थी। दादी जानकी ने तो सिर्फ 3 साल स्टडी किया, दादी गुलजार ने तो ओम मंडली में ही अपनी स्टडी की, बाहर की स्टडी की नहीं, और दादी प्रकाश मणि मैट्रिक तक भी नहीं पहुंची, 14 वर्ष की आयु में ही बाबा के पास आ गई। और भाइयों में से एक था जिसको यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, हमारा दादा आनंद किशोर, बाकी तो किसी ने भी ज्यादा स्टडी नहीं किया था। परंतु दादियां इतनी ऊंच स्थिति को कैसे प्राप्त हुई, जो आज तक भी हम उनसे प्रेरणा लेकर के अनेक गुणों की यादाश्त रख करके आगे बढ़ते हैं। आजकल एक कहानी हमारे पास में समझती, कम से कम 12 लोगों ने मुझे वो वीडियो का समाचार भेजा होगा। वो कहानी क्या है कि एक बच्ची है 5 साल की, और वो बहुत दिनों के बाद टर्की के अर्थक्वेक में कितने घंटे दबी रही, फिर उसको ढूंढ के बाहर निकाला। तो वो जो निकालने वाले थे उन्होंने उससे पूछा कि तुमको भूख नहीं लगी इतना समय, तुमको प्यास नहीं लगी, तुम इतना हर्षित हो और बिल्कुल सेफ निकली। तो वो छोटी सी लड़की क्या कहती कि नहीं, मेरे पास कोई सफेद वस्त्रधारी आती थी और मुझे खाना खिला करके पानी पिला करके चले जाती थी। कईयों के पास ये वीडियो में आया होगा मैं समझती, मेरे पास ही कम से कम 12 लोगों ने भेजा। तो ये कौन होगा, क्या कर रहे होंगे, ये अपनी जो दादियां फरिश्ता रूप धारण करके सब उड़ के गई है, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं का समाचार हमको कैसे कैसे मिलता रहता है। तो कहने का मतलब कि बिगर लौकिक स्टडी के, बाबा के ज्ञान की स्टडी करके, जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि हेल्थ मिनिस्टर भी आप हो, होम मिनिस्टर भी आप हो, कैरेक्टर मिनिस्टर भी आप हो, खजांची भी आप हो, तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने दादियों को देखा कि कोई डिग्री के बगैर दादी प्रकाश मुनि ने कितना सब कुछ सिस्टम बना करके रखा शांतिवन का, 25,000 लोग आराम से आए जाए रहे, ये कमाल है। परंतु ये है कमाल बाबा की और दिव्य बुद्धि की, लौकिक स्टडी अलग। तो कहने का मतलब कि यदि हम भी अपने अलौकिक स्टडी पर इस तरह से ध्यान रखें, बाबा की बातें जो हमें उस समय तो बहुत पसंद आती परंतु हम प्यार से उनको दिल से स्वीकार करके उस पर हम गहराई से विचार करें तो हमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ कितनी ऊंची बन सकती। और व्यर्थ संकल्प से अपनी एनर्जी भी खर्च होती, परंतु जो बाबा ने कहा है 2 बड़े खजाने हैं संगम युग के, आपके संकल्प और समय। समय जो गया वो वापस हाथ में नहीं आता, और जो मेरे संकल्प फालतू चले उसका तो थकान होगी, बाकी कुछ और रिजल्ट नहीं आने वाली है। और उसमें भी मैंने देखा है कि कई बार न सिर्फ ना उम्मीदी हो जाती परंतु व्यर्थ संकल्पों से जो हमारी खुशी गायब हो जाती और व्यर्थ संकल्पों से कई बार यदि वही हमारे क्या है कि मन में कुछ बात आ गई उसका चलता रहेगा तो उसमें कभी कभी मन में डर बैठ जाता। आजकल कई कारणों से कईयों के मन में डर रहता तो फालतू संकल्प चले और उससे हमें भविष्य का भी डर बैठ जाता। हालांकि हम बाबा के हैं, बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, परंतु जो हमारे संकल्प उसमें फिर ये विचार चलता, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक बारी कुछ समय पहले एक अखबार विदेश में लंदन में नेशनल पेपर, उन्होंने एक सर्वे किया तो उन्होंने प्रश्न पूछा कई लोगों से, उनकी तो हजारों संख्या की बात होती है रिसर्च की, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिस बात के लिए आपको मन में चिंता थी या डर था वो कहाँ तक वो बात वो निकली या वो बात कभी आई ही नहीं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपको थोड़ा सा दर्द होने लगा और किसने आपको कहा यह आपकी हार्ट की तकलीफ होगी, मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया और जब तक मैं डॉक्टर तक पहुंचूं वो बात सही है या नहीं है वो जांच हो, तब तक मेरे मन में कितने डर की बातें आई, कितना हमारे व्यर्थ संकल्प चले, अभी क्या होगा, कैसे होगा, कितना खर्चा होगा, पता नहीं शायद मौत भी आ, फालतू 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 संकल्प। अच्छा ठीक है, दर्द है, चेकिंग अवश्य कराएं, जरूर कराएं। बाबा कहते हैं कि ये तन बहुत वैल्यूबल है, परंतु हम फालतू संकल्प रच करके फिर जाकर के डॉक्टर को देखे तो जरूर हमारी हार्ट की प्रॉब्लम भी होंगे। और यदि किसने मुझे डरा लिया परंतु मैंने उस बात को स्वीकार नहीं किया, मैंने सोचा कि नहीं ये बात तो मुझे सोचनी ही नहीं है, हाँ चेकिंग करानी है तो चेकिंग से पता चलेगा है या नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो किसको मन में आया कि मैं घर छोड़ के आई हूँ, पता नहीं वहां आग तो नहीं लग जाएंगी, तो नॉट पॉसिबल, इतना तो नहीं होगा ना। हमने हर प्रकार से अपने सेफ्टी के साधन बना करके रखे हैं, कुछ नहीं होगा। परंतु फालतू संकल्प जो बैठ जाता उससे अंदर मन में डर भी आ जाता। तो अभी तो कितनी बातें आने वाली है बाबा ने बता दिया, इतने पहाड़ दुख के गिरने वाले हैं, मुझे क्या करना है, मुझे आज ही अपने पुशारत से बाबा की मदद से। और मैंने देखा है कि पुशारत हमारा होता है इतना और बाबा की मदद होती है इतनी, किसको ये बात का अनुभव है, हाँ देखो मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा किया, क्योंकि ये रियलिटी है, एक कदम खुद का हजार कदम बाबा के। तो हमारा पुरुषार्थ इतना, बस हम ये सोचे कि बाबा की बातों को मुझे याद करना है और बातों को मुझे बिल्कुल समाप्त करना है, तो उसे क्या होगा, बिल्कुल बाबा की मदद भी मिलती रहेगी, बाबा देखेगा कि हाँ ये बच्चा मेरा आज्ञाकारी है तो बाबा खूब प्यार भी देंगा, मदद भी देंगा और बाबा हर प्रकार से ऐसी सिचुएशन बनाएंगा जो आपके लिए रास्ता खुलता जाए, सहज सहज होता जाए। तो उसमें एक और बात मुख्य आती, मन को हम कंट्रोल करने चाहते हैं वो हम ध्यान रखते हैं, बुद्धि को हम बाबा के साथ याद में कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, और फिर बीच में आती है चित्त की बात। चित्त बीच में आकर के हमारे मन को भी हिला लेती है, बुद्धि योग को भी नीचे ऊपर कर देती है। चित्त का मतलब जो मेरे अंदर यादाश्त भरे हुए हैं इस जन्म के संस्कार, जो अनेक जन्मों का ہمارے پاس ریکارڈ بنا ہوا ہے وہ اس میں بھرا ہوا ہے، پرنتو چت جو اس جنم کے بچپن سے مانو کہ 2 ورش کی آیو سے کچھ کچھ باتیں یاداشت ہے، پھر تو قدم قدم پر وہ باتیں بھی ریکارڈ بھرتا جاتا ہے۔ پرنتو کلیوگ ہے اور کلیوگ میں انیک بار کیا بات آتی ہے، نیگیٹو بات، اور آتما کمزور ہونے کارن پھر وہ نیگیٹو بات کا بہت گہرا چھاپ لگ جاتا، تو اس میں چھوٹی سی بات میں وہ ہمیں بچپن کی بات یاد آتی ہے یا ہو سکتا ہے بڑے پن کی بھی بات، پرنتو وہ بات جو آتی ہے اس میں ہمیں نیگیٹو فیلنگس پھر سے اتپن ہوتے، اور اس گھڑی جو ویرتھ سنکلپ چلتے ہیں ہماری استھتی کو بالکل ہی نیچے لے آتی۔ اچھی باتیں چل رہی ہے پرنتو کچھ ایسی بات یاد آ گئی جو نیچے آتما آ گئی، تو چت کو بھی صاف کرنا بہت آوشیک ہے۔ اس میں 2 باتوں کے کنیکشن سے ہم چت کو صاف کر سکتے۔ ایک تو یدی کس نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسے ویوہار کیا ہو تو وہ بات ہم یاد کرتے ہیں، تو اس بات کو مجھے تھوڑا ویچار کرنا ہے کہ اس بات سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا۔ ہم اس غلط بات کو پکڑ کے دکھی ہو کر کے اپنے پاس وہ یاداشت میں چت میں ہم بھر کے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں آج بھی دکھ ہوتا۔ تو بابا کہتے کہ بالکل آپ اس پاسٹ کی بات سے پوچھو اپنے سے، اس سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا، اور آتما اور اسے آگے بڑھ سکتی۔ پرنتو دوسرا، اس کو معاف کر دو۔ ہم بھگوان کو یہ کہتی تھی نا بھکتی میں کہ میرے اوگن چت پر نہ دھرو، اور گیان میں آ کر کے ہم نے دیکھا ہم نے غلطی بھی کی ہے تو بھی بابا میرا ہاتھ پکڑ کے آگے ہمیں بڑھا کے لے کے جاتا۔ بابا کوئی ہمیں ایسے نہیں کہتا، پاسٹ کی غلطیاں تو چھوڑو پرنتو گیان میں آنے کے بعد بھی جو کچھ غلطی ہوتی بابا کہتے اوکے بچے، بابا کو بتا دیا، معاف، آدھا معاف، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو بابا اپنے چت پر نہیں رکھتے، بابا ہمیں فرگیو کرتے ہیں، معاف کر دیتے۔ تو ہمیں بھی یدی اپنے کو ہلکا رکھنا ہے، ویرتھ سنکلپ سے مکت کرنا ہے، تو ہمیں فرگیو کر کے اس بات کو سماپت کرنا ہوگا، نہیں تو وہ بات کئی بار میرے سامنے بار بار مجھے دکھی کرنے کے لیے آتی ہی رہیں گی۔ اور دوسری بات بابا کہتے ہیں، جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ اپنے پاس جمع رکھو اور باتوں کو چھوڑ دو۔ جتنا آپ کاغذ پر پین آپ وہی ڈرائنگ پر لکیر لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے تو وہ بات چھپ جائیں گے، پھر اس کو مٹانا سہج نہیں ہوں گا، یا مٹا بھی لیں گے پرنتو اس کی نشان خراب خراب رہ جاتے، وہ شیٹ کلین نہیں ہوں گا۔ تو چت پر بھی جو اچھی باتیں ہیں ہم اس کا چھاپ گہرائی سے لگاتے رہیں، جو وہ سکھ ہمیں کبھی بھی چھوڑے نہیں، وہ سکھ میرے ساتھ سدا رہے۔ مدھوبن کی یاداشتیں ہیں، بابا کی یاداشتیں ہیں، کچھ ایسے آپ کی دادیوں کے ساتھ کچھ انوبھو ہوئے وہ بھی آپ ایمرج کرو۔ جیون میں کبھی کبھی بہت اچھی باتیں بھی ہوتی، اس کو آپ ایمرج کر کے اپنے پاس جمع رکھو، تو اسے کیا ہوگا کہ آتما اس خوشی سے بھرپور ہوں گے، اور وہ جو آپ نے بار بار اس کو من میں ریپیٹ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گا۔ جیسے دادی جانکی سے ہم نے پوچھا تھا، کیونکہ دادی جانکی ہم کو پرانی کہانیاں بابا کی یگیہ کی ایسی سناتی تھی جیسے 70 سال پہلے 80 سال پہلے وہ جو بات دادی کے سامنے بالکل تازی ابھی بھی ہے. تو ہم پوچھتے تھے دادی سے کہ آپ کو اتنی کلیئرلی وہ بات کیسے یاد رہتی, تو دادی نے کہا کہ دادی کی کہانی تو کئی لوگ جانتے ہیں کہ بچپن سے دادی کو بہت بیماریاں آئی تھی, ٹی بی آیا, نیمونیا آیا, پیرالس آئی, یہ ہارٹ کی پرابلم آئی, بھن بھن پرکار سے. تو دادی کہتی کہ جب جب میرا تن ٹھیک نہیں ہوتا تو میں یہ سوچتی تھی کہ ابھی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے, مجھے بس آپ شانتی میں چھوڑ دو. تو 2 دن 3 دن ایسے ہی دادی کا بیتتا تھا, بس دادی لیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں چاہیے. تو کہتی ہے کہ اس سمے میں اپنے من کو بہلاتی تھی, جو بھی بابا کی باتیں تھی بچپن سے بابا کے پاس آئے, جو کچھ بیتا بابا کے ساتھ کے دنوں میں, میں وہ بات ایمرج رکھتی تھی جس سے میرے من کو شکتی آتی تھی, اور جو درد بھی ہوتا تھا پھر مجھے وہ سہن کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا. تو ڈیٹیچ ہو کر کے بابا کی باتوں کو یاد کر کے وہ میرے من میں وہ باتیں چھپی ہوئی ہے, تو میں بار بار انہوں کو سمرتی میں لاتی ہوں. تو ہمیں اب کیا کرنا ہوگا, اچھی اچھی باتوں کو آپ سمرتی میں رکھو, وہ چت پر اس کا گہرا چھاپ لگتا جائے اور باتیں پاسٹ کی آپ کی مٹتی جائے, کیونکہ نہیں تو وہ جو پاسٹ کی باتیں یاد آتی آتما کو ہلا لیتی اور سب جو آج کا سکھ ہے وہ چھین لیتی, ویرتھ سنکلپوں کے رفتار میں ہم چلے جاتے. تو بابا کی باتیں تو بابا نے بالکل, بابا سپریم سائیکولوجسٹ بھی ہے, من کی گہرائی میں کیا ہوتا ہے آپ اویت مرلی پڑھو تو بابا جو بتا رہی ہیں 3 پرکار کا سنیہ, اس دن بابا نے بتایا 3 کیٹیگریز. تو بابا ہر ایک کے بچوں کے من کو تو اچھی طرح سے جانتا ہے. آپ لوگوں کو ایسے لگا ہوگا نا کہ جو بابا بتا رہے ہیں سارے سٹیجز بابا کیسے جانتے. شیو بابا تو نراکار, اس کو تو ان باتوں کا انوبھو نہیں ہے, اس نے آتا ہو جاتا ہو, نہیں بابا کا تو سنے استائی ہے. ہم بھول جاتے ہیں بابا کو, بابا ہمیں نہیں بھولتا, پرنتو بابا جانتا ہے. کیوں؟ ماں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے جانتی ہے, اسی طرح بابا سپریم ماتا تو وہ بھی اچھی طرح سے ہمیں ایک ایک کے دل کو جانتے ہیں اور من میں کیا چل رہا ہے بابا وہ بھی دیکھتے ہیں بہت اچھی طرح سے. تو بابا ہمیں بہت اچھی طرح سے علاج بھی دیتے ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا. لاسٹ بات میں یہ کہیں گے, جب آتم سمرتی ہے, بابا کی یاد کی شکتی ہے, تو یہ 2 بندیاں تو ٹھیک ہے, پرنتو یہ 2 بندیوں کا جتنا ہم ابھیاس کرتی ہیں اسے 3ری بندی ڈراما کی بندی سہج ہمارے پاس مضبوط ہوتی جاتی ہے, اور آگے کے سمے کے لیے یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے ابھیاس کرنا ہوگا. نہ صرف انت متے سگتے, یہ تو صحیح بات ہے, آج بھی بابا نے یاد دلایا, پرنتو اس سے پہلے بھی انت متے تو ٹھیک ہے جو ہوں گا, پرنتو اب بھی جو باتیں چل رہی ہے جس میں ہمیں پاس کرنا ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ اچانک کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہمارے کو, ہمارے نزدیک کے ساتھیوں کو, تو یدی ہم نے فل سٹاپ لگانے سیکھے ہوں گے, ویئر سنکلپ سٹاپ کیا, تو بابا کا جو کنیکشن ہے بابا سے ہم اشارہ پکڑ سکیں گے. نہیں تو بابا مجھے سگنل دے رہا ہے, پرنتو ہمارے من میں یہاں وہاں کی انیک باتیں آ رہی ہے تو میرا من شانت نہیں ہو رہا. تو تو بابا کا جو سگنل ہے ہم پکڑ نہیں پائیں گے. بابا مجھے اشارہ کہہ رہا ہے کہ بس تم یہاں بیٹھو, تم ہلو نہیں. اور میں بھاگ رہی ہوں, بھاگتے بھاگتے کہاں میں پہنچیں گی کیا معلوم. پرنتو بابا مجھے اشارہ دے رہا ہے, پرنتو میں پکڑ نہیں رہی ہوں بابا کا اشارہ. تو فل سٹاپ, آج کے سمے سیکھیں اور اس کا ابھیاس کریں, بہت بہت آوشیک ہے, جس سے ہم خود بھی جو بابا جہاں بھی بٹھائے جیسے ہمیں اشارہ دے وے ہم اس کو کر سکے, تو پھر ہم اوروں کی بھی کچھ سیوا کر پائیں گے, مدد کر سکیں گے. نہیں تو آگے کا سمے دیکھو کیا ہوتا ہے, کیا معلوم. اوم شانتی.